चलिए सातवां पॉइंट, बेवाओं और यतीमों की खबर गिरी करने पर तहज्जुद, जिहाद और रोजों का सवाब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत है, और अबू हुरैरा वो प्यारे सहाबी थे जो बहुत कम अरसा अल्लाह के नबी के पास रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत इन्हीं से हुई, क्योंकि इन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था, फोकस्ड थे। शादी नहीं की अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कि कहीं घरदारी में पढ़कर मैं इल्म का कोई मसला या इल्म की कोई बात सुनने से महरूम हो जाऊं। उनकी रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत और मस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह सवाब का हकदार है, और मेरा यानी अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा का ख्याल है कि उन्होंने यानी मालिक ने कहा, वो अल्लाह के सामने इस क्याम करने वाले की तरह है जो ना वक्फा करता है, यानी दो तरावी फिर दूसरी दो फिर दूसरी, बीच में बैठ के बातें नहीं करते, ना वक्फा करता है ना थकता है, और उस रोज़ेदार की तरह है जो रोज़ा छोड़ता ही नहीं, मुसलसल रोज़े और मुसलसल क्याम करने वाले की तरह है। कौन? बेवा औरत। आप देखिए किसी सोसाइटी में क्या ऐसी बेवा औरतें नहीं हैं, विडोज, हम भी ये अजर पा सकते हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, यकीन करें अपने रिश्तेदारों में इतने मिल जाएंगे, अपने गली मोहल्ले में इतने मिल जाएंगे, यहाँ ना भी कोई नज़र आए तो अपने मुल्क में बहुत हैं, आगे पीछे भी आप देखभाल करते ही होंगे। आज इस हुक्म को सुनकर कि मैं ये काम करूंगी तो जिहाद, रोज़े और रात के क्याम के सवाब मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात है अगर ख़ानदान के लोग हैं तो सिला रहमी भी है, और सिला रहमी क्या होती है आप देखिए कि जिसकी वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को जोड़ेगा, सिला रहमी अर्श से लटकी हुई है। अल्लाह ने फरमाया कि जो सिला रहमी करेगा मैं उसको जोड़ूंगा, और जो रिश्तों को काटेगा मैं उसको काटूंगा। हज़रत जुबैर बिन मुअत्तम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातियु रहम। सबसे मुश्किल हुक्म है अभी तक की बातों में, ये जो इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, जमात से पढ़ना, 100 आयतें पढ़ लेना, इट्स वेरी इजी, ये हुक्म सबसे मुश्किल है। और वो क्या? रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और बुखारी की रिवायत में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफी। किसी काम का बदला देना सिला रहमी नहीं है, यानी कोई आपके साथ अच्छा करे तो आपने भी किया, कोई गिफ्ट दे गया आपने भी दे दिया, किसी ने ईद दी आपने भी दे दी, नहीं, बल्कि सिला रहमी करने वाला यानी रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो शख्स है कि जब इसके साथ सिला रहमी वाला मामला ख़त्म कर दिया जाए तो वो फिर भी सिला रहमी करें। और यहाँ मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक याद आ रहे हैं, कैसे मस्तो नाम का सहाबी जो उनका रिश्तेदार था उसकी किफालत करते थे, लेकिन जब आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत में वो शामिल हुआ तो बाप होने के नाते कह दिया, आज के बाद इसकी मदद नहीं करूँगा। तो कुरान में अल्लाह ने पूछ लिया कि क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अला तुहिब्बू ने यग़फिरुल्लाह, तो फिर उसको वही दो। तो अबू बकर क्या बोल उठे, जी अल्लाह ताला हम यही चाहते हैं। तो दोबारा उनका वजीफा शुरू कर दिया। ज़रा सा सोचें आप और मैं अपने ऊपर लें, क्या किसी अपने रिश्ते से कटी हुई तो नहीं हो? देखिए ये इशू है बहुत कड़वा, लेकिन मैं दिल नहीं तोड़ना चाहती आपका। अगर आपने पूरा महीना, आज माशाल्लाह 25वीं रात है, 24 रोज़े तो रख लिए ना अल्लाह ने चाहा, तो सिर्फ कल क़यामत के दिन इन चारों का अजर ख़त्म, सहरियाँ खाई, इफ्तारियाँ मस्जिदों में भेजी, सदक़े दिए होंगे, ज़कात दी होगी, कई लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, मैं खुद भी कुछ को जानती हूँ जो उम्रे पे गए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से सब डिलीट कर दिया जाए कि आप अपने किसी रिश्ते से कटी हुई हैं। खुशी की बात है कि गम की? एक नबी कह रहे हैं कि ला यदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता क़ातियु रहम। और मैं जितना लोगों के साथ उठती बैठती हूँ मुझे अब उतना ही ज़्यादा फील हो रहा है। मैं अक्सर ये सोचती हूँ, ये मेरी बदगुमानी हो सकती है, मैं सोचती हूँ जो लोग कुरान क्लासेस में नहीं आते, दावत दें फिर भी नहीं आते, कम आते हैं, एक दिन आए, दो छुट्टियाँ, इसकी वजह यह कि ये रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं, अपने दोस्तों में खुश हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं। मेरा अपना दिल कहता है ये कि चूँकि बेचारों के बहुत हैं ताल्लुकात, हम तो हो सकता है परदेश में, हमें किसने मिलना, हमने किसको मिलना, ये बेचारे ख़ानदानों बिरादरियों वाले, अब इन्होंने सबको लेके चलना है। बट जो चीज़ मैंने फील की है वो क्या है कि जो अल्लाह से नहीं जुड़ा होता ना वो बंदों से भी कोई नहीं जुड़ा हुआ। अल्लाह को क्या खुश करना था वो तो अपनों को खुश नहीं कर सके। तो अभी देखिए 3-4 रातें रह गई हैं, और मैं अपने इस साल के भी और हर साल ही के ये जो लेक्चर्स होते हैं रमज़ान से पहले, प्रेप रमज़ान, उसमें इस मौजू पे बहुत बात करती हूँ कि इतनी मेहनतें करने से पहले अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक तो ठीक कर ले, जिसमें एक रिस्क हलाल और दूसरा रिश्तेदारियों को मिलना। आज की रात अल्लाह करे लैलतुल कदर हो, अल्लाह करे हमें मिल जाए, आज की थी या गुजर गई या आनी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, 3 दफ़ा आप करें, अल्लाह माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी कर दे। तो एक चौथा जुमला भी लगा लीजिए अपने पास से, बिदत नहीं होगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे, मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। नहीं कर सकते? अब इसको दुआ का हिस्सा बनाकर कोई नई दुआ ना बना दे। लेकिन कितनी हैरत की बात है, हम जो चीज़ अल्लाह से मांग रहे होते हैं वो खुद नहीं देते दूसरों को। क्या हम बड़े या अल्लाह बड़ा? आपको मैं तरीका सिखाती हूँ, शायद आप में से किसी एक को फायदा हो जाए। और आप आज की रात में सिला रहमी के लिए अपने उन रूठों को मना लें, उनको पैगाम दे दें, फ़ोन कर लें, टेक्स्ट कर दें, ईमेल कर दें, खुद जा सकते हैं जाके, भाई मैं तो अल्लाह के लिए तुम्हें मनाने आई हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और इसको इतना हल्का लोग समझते हैं कि गोया के छोड़े छोड़े जे छोड़े जी चले नफल पढ़ाएं। क्या फ़ायदा, आपके नफल लटकते रहेंगे आसमानों ज़मीन के बीच में। और मैंने ये देखा, जहाँ इल्म की कमी होती है ना, जहालत है, इंसान जानवरों के बीच में रहता है देहातों में, वहाँ ये झगड़े ज़्यादा हैं। जो शहरों के लोग या पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके लिए और ही बड़े मसले हैं। अब आप देखिए कि जो लोग यानी दुनियादारी के धंधों में पड़े होते हैं ना, एक लिहाज से उनको तो किसी की परवाह नहीं, उनका शिर्क और तरह का है। मसलन सगे भाई के पास टाइम ही नहीं बहन को मिलने का, वहाँ रिश्तों की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, गिफ्ट भेज दो बहन के घर, खुद नहीं जा रहे। लेकिन जब इंसान बहुत खुलता मिलता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, रिश्ता लेके छोड़ दिया झगड़ा, और मंगनी टूट गई छोड़ दिया, फलां हमारे खानदान में एक तलाक हो गई थी, वो दो लोगों में नहीं होती, वो दो खानदानों में होती है। और एक सबसे अहम इशू जो मैंने देखा है, जायदादें। वाकई मुझे कुरान की आयत समझ आती है कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की हवस ने गाफिली कर दिया, तुम तो कब्रों तक पहुंच जाते हो। कब्र में लोग पहुंच जाते हैं, उसके करीब पहुंचे होते हैं, लबे गोर होते हैं, लेकिन माफियां नहीं करते, क्यों? अब आप क्या करें? आप कहते हैं आपको क्या पता, यहाँ बैठ के बातें करनी कितनी आसान है, आप हमसे पूछें क्या हुआ आए। और जब वो सुनाते हैं ना तो हंसी आ रही होती है, क्या बात तो निकले, अंदर कुछ नहीं निकलती, बात खत्म हो जाती है। अपने लिए क्राइटेरियन रखें, क्या मेरे रिश्तेदारों ने मेरे कत्ल का इरादा किया था? क्या मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कुएं में तो नहीं फेंका अभी तक? किसकी मिसाल है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल। और क्या मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मुल्क छोड़ के, शहर छोड़ के जाने पे तो नहीं मजबूर किया? कौन है वो? हमारे आपके प्यारे नबी। और उन्हीं के लिए अल्लाह कहते लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में बेहतरीन उस्वे हसन है। जितनी मरतबा दरूद पढ़ लें, जितनी दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ें, कम है। लेकिन एक दफ़ा उनके किरदार पे कदम रखते हुए उनके नक्शे कदम पे चलना, ये ज़्यादा बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और बड़ी प्यारी वजह बताने लगी आपको रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ने की, फरमाया मन अहब्बा, जो ये पसंद करे, आई यबसुतल्लाहु अलैहि फी रिज़्क़िही, कि अल्लाह उसके रिस्क में कुशादगी कर दे, वसअत आसानी बरकत कुछ भी कह लें, या फिर औ यंसा फी असरिही, या कोई ये चाहे कि उसकी मौत को अल्लाह दूर कर दे, यानी उसकी उम्र लंबी हो जाए, ऐ फी अजलिही, तो क्या करे? दो लफ्ज़ है, फल यसिल रहमा, तो उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारियां जोड़े। चार चीज़ें अगर इस टॉपिक में देखें, रिस्क में कुशादगी, वसत आसानी बरकत, और मौत को दूर किया जाना। सच बताएं, यहाँ बैठे हम, अगर कोई हमें इन दो चीज़ों की श्योरिटी दे दे कि जाओ जितना रिस्क मांगना ले लो, हजारों को लाखों में, लाखों को करोड़ों, करोड़ों को अरबों में बदल दूंगा, जो ले लो। और दूसरी बात है कि उम्र तो तुम्हारी मैंने 40 साल लिखी थी, लेकिन अब तुम्हें मैं 100 साल की उम्र देता हूँ। हमारे पांव जमीन पे लगेंगे, पर शर्त एक है बस, कि जिसको माफ करने को दिल नहीं करता उसको माफ कर दो। हम कितने सख्त दिल हो जाते हैं, और यकीन करें दिल से रोते हैं इन सगे रिश्तों पे। सगी बहन भाई 15 15 साल से नहीं मिलते, और इतने में जब एक दुनिया से जाता है तो रोते हुए फिर जाते हैं, हाय भाई तुझे तो मैंने इतने साल से देखा ही नहीं, अब क्यों आगे देखने, देखना था तो जिंदगी में देखते। ये सारी रिवायतें जो आपसे शेयर की ना, ये बुखारी और मुस्लिम की, इनके रेफरेंस एंड पे इंशाल्लाह आपको हम देंगे PDF, कि आप खुद ये सारी हदीसें पूरे शरह सदर के साथ पढ़ें। तो फिर क्या करना है, रिश्तेदारियों को निभाएं। याद रखिए कि ये कहने में आसान है और करने में आपको मुश्किल लग रहा है ना, मैं आपको एक पूरे यकीन से कह दूं, पहली दफा मुश्किल लगेगा, दूसरे रिश्तेदार को मनाना निस्बतन आसान लगेगा, और तीसरे को इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, और चौथे की बारी तो आपके दिल में खुजली होगी, कोई मुझे सताए और मैं उसको माफ करूं। क्यों, लज्जत बड़ी मिलती है। आप देखिए कि नबी सल्लम 13 साल मक्का में सताए गए, 8 साल मदीना में जाकर। सताना क्या था वहां, तो जंग तील तलवारें लेकर आगे रिश्तेदार, फतेह मक्का का मौका है। 21 साल गुजर चुके हैं एक टसल में, सब सामने खड़े हुए मुजरिमों की हैसियत में, जिन्होंने जान लेने की कोशिश की, जिनकी वजह से आपका घर छूटा, आपको 3 साल शाबे अबी तालिब में दरख्तों के पत्ते तक खाने पड़े, जिनकी वजह से ताइफ गए और वहां से जूतियां लहू लहान कर कर आए। लेकिन आपकी जुबान पे क्या जुमले थे, पहले तो उन्हीं से पूछा, तुम बताओ तुम मुझे उम्मीद क्या रखते हो, वाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। तो क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं क्योंकि आप माफ करने वाले। तो आपने क्या कहा, वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था कि ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज के दिन तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम्हें अल्लाह माफ करे, मैं भी माफ करता हूँ। कोई इस रास्ते की रुकावट है तो बताइए। शैतान हमारे पाओं की बेड़ियां बन जाता है, और यकीन करें राह जाते वसवसे, और सबसे बड़ा वसवसा क्या, हाँ हम क्यों नीचे लगे, हम क्यों हार माने, तुम्हारे ख्याल में हम को झूठे, वो कहेंगे हाँ हाँ झूठे थे ना इसलिए मान गए। झूठी है ना, और झूठी अकड़ में जीते हैं और खुद भी खुश नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा वक्त दूं आपको, यहां बैठे बैठे माफ करें, यकीन करें इसकी लज्जत इतनी ज्यादा आपको मिलेगी, बल्कि अल्लाह की रहमतों के खजाने आप पे कब उतरेंगे, निछावर होंगे अल्लाह की रहमतें अगर आप माफ करें। और जिसने जितना ज्यादा दुखाया उसको उतनी खुशी से माफ करो। अक्सर सिस्टर्स अपने सवाल जवाब के सिलसिले में पूछती हैं, मुझे किसी का सवाल याद आ गया इस वक्त, कहने लगी अगर किसी की वजह से आपकी जिंदगी खराब हो जाए फिर भी माफ कर दें। अब आप सवाल सुनिए, स्नैरियो क्या है कि एक बेचारी भोली भाली 17 18 19 साल की लड़की पाकिस्तान में जी रही थी, अपने मजे में थी, बहन भाइयों की भी लाडली तो माँ बाप की भी लाडली होगी। इतने में एक शख्स की तरफ से रिश्ता गया और ब्याहने आ गए, और वहां ब्याह कर छोड़ कर चले गए। फिर एक आध साल के अंदर कोशिश करके वीजा लगवा के आपको बाहर बुला लिया, जहां उस लड़की का कोई नहीं है, वो सिर्फ एक वीजा लेकर मियाँ की बिहाफ पे पहुंची। अब वो कहती हैं वहां जाकर वो पूछता नहीं, ताल्लुक नहीं निभाता, घर वालों की खिदमत करती रहो, रोटी मिलती रहेगी। और फिर 4 6 साल के बाद जब बर्दाश्त खत्म हो तो फिर स्टेप लो कि इनकी रोटियां तोड़ने से बेहतर है कि खुद काम कर लें। तो फिर वहां से निकले तो जो शहर में फिर गवर्नमेंट के धक्के खाए, कहती कि उस शख्स को भी माफ कर दूं मैं। ये किसी का सवाल था, समझ गए आप कैसे अंदाज होगा कि एक मर्द ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे कहां से उठाकर कहां ला दिया। मैंने उन्हें कहा कि देखिए सिस्टर, आप इसको ऐसे क्यों सोचती हैं कि एक शख्स आपका जिम्मेदार है आपको यहां लाने का, आप मुझे ये बताएं कि आज आप कहां बैठी हैं। कहती स्कूल में, क्लास में हूं। क्या आप अपने घर में खुशहाल जिंदगी बसर कर रही होती माशाल्लाह बहुत सारी खवातीन की तरह, तो क्या आपके दिल में अल्लाह की ये मोहब्बत आनी थी जब है, आपको ये फारिग वक्त मिलना था कुरान सीखने को। कहती ये तो है, اور کئی لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں جب قرآن پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ یہ ہم یہاں اس ملک میں کیوں پہنچائے گئے، جیسے آپ فرانس میں پچھلے 8-10 سال سے دھکے چل رہے تھے، اب اللہ نے آپ کو قرآن پکڑا، آپ کہتے ہیں اچھا اللہ مجھے اس لیے ادھر لایا تھا کہ پاکستان میں رہ کے میں نے کوئی نہیں تھا پڑھنا، آج یہاں پڑھنے لگ گئی ہوں. بڑے سے بڑا ظلم اور ستم کرنے والا شخص بھی آپ کے لیے خیر کا فیصلہ کر رہا ہوتا، آپ کہتے ہیں اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی. شکر کیجئے زندگی برباد کی ہے، اس سے بہت برا وہ شخص ہے جس نے آپ کی آخرت برباد کرنی تھی، حرام کی کمائی کھلا کر اور آپ کو بے پرد کر کے اور آپ کو اس دنیا کے سمندر میں جھونک کے. تو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے ہر کام میں کوئی خیر ہوتی ہے. سب کو کھلی معافی، جس نے ستایا اس کو بھی معاف کریں، جو ستا رہا ہے اس کو بھی معاف، اور جو کبھی زندگی میں ستائے گا اس کو بھی معاف، ایڈوانس معافی. اگر اس درجے پہ آپ اپنا دل کھول کے یہاں بیٹھے نا، آپ کو ایسے لگے گا آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے، 10 پاؤنڈ وزن آپ کا کم ہوتا ہوا دکھے گا آپ کو. ہم خام خواہ گندگی کا بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں، اگلے کو لینا نہیں دینا، کر گیا کوئی زندگی برباد، ختم ہو گئی، آپ اپنی تو نہ کیجیے. لیکن یہ سبق پڑھانے والے بہت تھوڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، ذرا کڑوی کڑوی سنانا، تم بھی ذرا مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے بیوقوف نہیں بننا چاہیے، کسی کو اس کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ آپ پہ زیادتی کرے، لیکن معاف کرتے ہیں. اب آپ بتائیے مجھے، دل کر رہا ہے کرنے کو معاف کسی کو؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے.